मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। एफईआईएस के आज 19 फरवरी 2020 के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के अंतर्गत मैं भारत को जो पांचवां स्थान मिला है विश्व की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का, उस पर मैं कुछ बातें करूंगा, लेकिन इससे पहले मुझे कुछ दूसरी बातें भी आप सबसे करनी है। सबसे पहली बात यह दोस्तों कि आप सब जो प्री एग्जाम होना है उसका फॉर्म भरने में लगे हुए हैं और लगातार मेरे पास मेल की बम्बार्डिंग हो रही है कि सर ये कैसे करें, ये कैसे करें, इसके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। कल मैंने इसके बारे में कुछ चर्चा की थी और जब फॉर्म का विज्ञापन आया था उस समय भी मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट किया था कि आप पूरे के पूरे विज्ञापन को बहुत ध्यान से पढ़ें। आपको पढ़ना ही चाहिए, केवल वही हिस्सा नहीं पढ़ना चाहिए जिससे आपका जो काम पड़ेगा, बल्कि पूरा का पूरा हिस्सा पढ़ना चाहिए ताकि आपको सब चीजें गहराई से गंभीरता के साथ पता लग सके। तो दोस्तों, कल जो कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, अब मैं उन प्रश्नों के उत्तर आपको विज्ञापन वाले ही अंशों के माध्यम से दे रहा हूं कि कैसे देखें कि वहां चीजें बहुत साफ तौर पर लिखी गई हैं। ऐसा नहीं कि वहां कुछ ऐसी भाषा में लिखी गई है जो आप जानते नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अटपटे तरीके से लिखी गई है कि आपकी समझ में ही नहीं आ रहा है। देखिए, मैं कुछ अंश आपको पढ़ करके सुनाता हूं और आपका प्रश्न भी आपको बताता हूं। मुझसे कई बार लोग प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर मेरी जन्म तिथि ये है तो क्या मैं एलिजिबल हूं, और आप देखिए कि उसके लिए यूपीएससी ने कितना क्लियर कट लिखा है। मैं हिंदी में ही पढ़ करके सुना रहा हूं। उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2020 को पूरे 21 वर्ष की हो जानी चाहिए किंतु 32 वर्ष की नहीं होनी चाहिए। इसके बाद भी वो समझा रहे यूपीएससी, देखिए, अर्थात उसका जन्म 2 अगस्त 1988 से पहले और 1 अगस्त 1999 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब आप बताइए कितना क्लियर कट उसमें लिखा हुआ है। तो आप मुझसे क्यों पूछते हैं? देखिए, आप मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा कि सर आपसे पूछ रहे हैं तो क्या परेशानी होगी, क्या इतना भी नहीं पूछ सकते। सवाल मुझसे पूछने का नहीं है, मैं तो जवाब दे दूंगा। मेरी जो चिंता है दोस्तों, वो आपके मस्तिष्क की क्षमताओं को लेकर के चिंता है, आपके कार्य करने की पद्धति को लेकर के चिंता है कि आप खुद अपने दिमाग का उपयोग क्यों नहीं करते हैं, आप खुद थोड़ी सी मेहनत क्यों नहीं करते, क्यों नहीं तकलीफ उठाना चाहते हैं उन चीजों के लिए जो आपसे जुड़ी हुई है और जो बहुत ही सामान्य प्रवृत्ति की है। मुझसे उन प्रश्नों को पूछिए जो थोड़े से कठिन किस्म के हों, जो आपकी समझ से परे हों, जिनके उत्तर आपको दूसरी जगह नहीं मिल पा रहे हों, तो मुझे उत्तर देकर बेहद खुशी होगी। लेकिन अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के लिए जो आपके सामने हैं अगर पूछेंगे, मेरे लिए बताना बहुत आसान है, मैं बता भी दूंगा और मुझे इसको लेकर के कोई नाराजगी भी नहीं होगी, लेकिन चिंता मुझे दोस्तों जरूर है। तो मेरी बात को आप अन्यथा न लें, इसे बहुत सकारात्मक रूप में लेंगे, तभी आप सही मायने में मेरे इस डेली ऑडियो लेक्चर का लाभ भी उठा पाएंगे। अब आप देखिए कि मेरे पास इतने मेल आए हैं कि सर क्या हम प्री का फॉर्म भर रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम परीक्षा में नहीं बैठेंगे तो इसे काउंट कर लिया जाएगा, यानी कि जो आपको चांस मिलते हैं 6 मौके या 9 मौके, तो इसकी गिनती किस तरीके से होगी? और ये प्रश्न पूछने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब आप देखें कि यूपीएससी क्या कह रहा है। मैं फिर से अब यूपीएससी के ही शब्द आपको पढ़ करके सुना रहा हूं। उसने इसके लिए 3 पॉइंट्स दिए हैं। पहला, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को परीक्षा में बैठने का एक अवसर माना जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने को कह रहा है ना, बैठने को, फॉर्म भरने को नहीं कह रहा, एक अवसर माना जाएगा। तो बैठना कब होगा? फॉर्म भरने से तो बैठना नहीं होगा, बैठना तो तभी होगा ना जब आप अपना एडमिशन कार्ड लेकर के परीक्षा हॉल में जाएंगे और बैठ जाएंगे और इसके बाद आपको पेपर मिल जाएगा, फिर एग्जामिनर आए, जो इन्विजिलेटर होते हैं वो आएंगे और आपसे फॉर्म पर दस्तखत करवाएंगे कि हाँ मैं एग्जाम में बैठा हूं, तभी बैठना होगा ना, इसको परिभाषित करने की जरूरत है, बताइए। इसके बाद फिर क्या दे रहा है, देखिए, सेकेंड पॉइंट दे रहा है यूपीएससी कि यदि उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा के किसी एक प्रश्न पत्र में वस्तुतः परीक्षा देता है तो उसका परीक्षा के लिए एक प्रयास समझा जाएगा। जैसे आप जनरल स्टडीज के फर्स्ट पेपर में बैठ गए लेकिन आपका बहुत बेकार बना, सेकेंड पेपर में आप नहीं बैठे जिसे आप सी सेट कहते हैं, तो यह मत समझिएगा कि नहीं नहीं चूंकि मैं सेकेंड में नहीं बैठा हूं तो मेरा एक चांस नहीं माना जाएगा। नहीं, आप चूंकि पहले में बैठ गए हैं तो वो एक चांस काउंट हो जाएगा। तीसरा दे रहे हैं कि उम्मीदवारों के रद्द होने के बावजूद उम्मीदवार की परीक्षा में उपस्थिति का तथ्य एक प्रयास माना जाएगा, जैसे आप परीक्षा में बैठ गए लेकिन किसी वजह से आपकी उम्मीदवारी निरस्त हो गई, कुछ गलत हो गया, कुछ गड़बड़ हो गया, तो भी एक चांस काउंट कर लिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मेरा तो वो निरस्त हो गया था तो वो चांस नहीं था। देखिए कितना क्लियर कट लिखा हुआ है दोस्तों, तो प्लीज आप थोड़ा सा ऐसा कीजिए। इसी तरह से लैंग्वेज को लेकर के मेरे से प्रश्न पूछा जाता है कि सर हम ये इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं, तो इसके बारे में मैं जवाब आज नहीं दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास दूसरी बातें भी जरूरी हैं और लैंग्वेज का सवाल तो मेन एग्जामिनेशन में आएगा दोस्तों। यहां मैं खासकर आप लोगों से फिर से बहुत विनम्रतापूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि प्लीज एक बार आप जो पूरा का पूरा विज्ञापन है उसे ध्यान से पढ़े, पढ़ना ही चाहिए भले ही आपकी जरूरत ना हो, आपके पास इतने अटेम्प्ट हैं, एक ही बार पढ़िए, मैं हर बार पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। दोस्तों आइए अब अपने कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आते हैं। दोस्तों कल मैंने महिला सशक्तिकरण के बारे में बातें की थी, खासकर जो अभी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था उसके संदर्भ में। मैं यहां दो बातें विशेष रूप से कहने जा रहा हूं। पहला है कि अभी जो स्टूडेंट इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं वो यदि मेरे डेली ऑडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे तो मैं उन्हें विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि महिला सशक्तिकरण पर उनकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और खासकर अगर वो विमेन कैंडिडेट हैं तो आप अपना स्टैंड डिसाइड कीजिए कि आप इसके पक्ष में हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के या नहीं है, और जो भी आपका स्टैंड हो वो बहुत ही तार्किक हो, भावनात्मक ना हो, इमोशनल नहीं हो, उपदेशात्मक नहीं हो, नहीं नहीं ऐसा होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, आपके पास तर्क होने चाहिए। और मैं सजेस्ट करूंगा एक किताब सेपियंस, युवाल नोआ हरारी की लिखी हुई किताब है, रिपीट कर रहा हूं, सेपियंस, राइटर है युवाल नोआ हरारी, ये ओरिजिनली इंग्लिश में है लेकिन ये हिंदी में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी इसका अनुवाद हुआ है। इसका एक चैप्टर है लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उसे आप पढ़िए। आप जब उसे पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में 1000 वाट का बल्ब जलेगा कि बाप रे, अच्छा यह सच्चाई है। प्लीज आप उसे पढ़ें, उसमें आपको बहुत नए तथ्य मिलेंगे, और मेरा दावा है कि यदि आप अपनी बातचीत के दौरान उनमें से कोई भी तथ्य प्रस्तुत कर सके इंटरव्यू बोर्ड के सामने तो आपके नंबरों में अद्भुत इजाफा हो सकता है। और मैं लीजिए आपकी सुविधा के लिए जो हिंदी की किताब है उसका पेज संख्या भी बता देता हूं, उसका पेज नंबर है 161, उस पर लिंग भेद चैप्टर शुरू होता है, केवल 2-3 पेज हैं, आप उसे पढ़ें, ढेर सारे नए इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगे और आपके दिमाग में एक विस्फोट पैदा होगा कि अरे बाप रे, ये मैं क्या पढ़ रहा हूं। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एक अभी अपने डिसीजन में एक टिप्पणी उन्होंने कही है, उसमें उन्होंने कहा है कि बेहतर होगा कि आप इसे नोट भी कर लेंगे, हम चाहते हैं कि देश भर के पर्यावरणविद, अर्थशास्त्री और वैज्ञानिक यह देखें कि एक पेड़ अपने पूरे जीवन काल में कितनी ऑक्सीजन देता है, उसी आधार पर पेड़ की कीमत का आकलन होना चाहिए। यह कीमत उस प्रोजेक्ट की कीमत में शामिल की जानी चाहिए जिसमें पेड़ों को काटने की जरूरत पड़ती है, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बेहतर होगा कि आप इसे कहीं नोट कर लें। यहां मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगा खासकर। पहली बात तो यह कि यह आपके एनवायरमेंट से संबंधित टॉपिक से जुड़ा हुआ है तो बहुत महत्वपूर्ण है, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं वो ऑलरेडी सरकार में हो रही हैं। जैसे उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की कीमत में शामिल की जानी चाहिए तो आपके सिलेबस में है, आप थर्ड पेपर मेंस का देखिए, उसमें एनवायरमेंट का जो है तो एनवायरमेंट का जो असेसमेंट होता है, एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट, पर्यावरण प्रभाव आकलन, ये बकायदे टॉपिक के रूप में उसमें शामिल किया गया है, और इस पर 2 साल पहले क्वेश्चन भी पूछा गया था, तो ऑलरेडी ये है। इसी तरह से सरकार ने एक प्रतिपूरक क्षतिपूर्ति कोष भी बनाया हुआ है, बकायदे मूल्यांकन होता है कि इस प्रोजेक्ट के कारण पर्यावरण की कितनी हानि होगी, और जो हानि होती है वह राशि उस प्रोजेक्ट के मालिक से ली जाती है और उसे एक फंड में जमा कर दिया जाता है, और उस पैसे से फिर पर्यावरण का संवर्धन करने की कोशिश की जाती है। तो ये दो हमारे यहां पहले से ही व्यवस्थाएं की हुई हैं। दोस्तों अभी हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आ रहे हैं, और आज एक मुझे बहुत अच्छा हिस्सा पढ़ने को मिला, और वो ये कि जब हमारे जो अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे और हमारे प्रधानमंत्री जी उनका स्वागत करेंगे, तो रनवे के पास जो उनके सम्मान में कुछ लोक नृत्य होंगे लॉन एरिया में, तो मैं आपको कुछ लोक नृत्यों के केवल नाम भर बता रहा हूँ। ये गुजरात के लोक नृत्य हैं और प्री एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा कि ये लोक नृत्य गुजरात के हैं, इनके नाम क्या हैं। मटकी के साथ रास, राठवा नृत्य, हुडो रास, कच्छी गरबा, मेवासी नृत्य, मिश्र रास, मंजीरा रास, मडियारो, डांग नृत्य, गोफ नृत्य, सिद्धि धमाल, शौर्य रास और मेर कन्या तलवार रास, इनकी झांकियां लगेगी। तो इतने सारे मैंने नाम बताए हैं, ये सब के सब गुजरात के हैं, तो ये नाम आपके जहन में होने चाहिए। फ्रेंड्स, अभी भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ था संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, प्रवासी प्रजाति सम्मेलन। इस सम्मेलन में को हमारे प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया था, और खासकर इसमें जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, जिसे हम गोड़ावण कहते हैं, उसको लेकर के बातचीत हुई, और ये बात आई कि पाकिस्तान के कारण सबसे ज्यादा इसकी हत्याएं हो रही हैं, क्योंकि ये गुजरात राजस्थान का जो बॉर्डर है, सीमावर्ती क्षेत्र, वहां ये पक्षी सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। 60 के दशक में इसकी टोटल संख्या लगभग 1500 के आसपास थी, जो घट करके अब ज्यादा 150 के करीब रह गई है। और इस पक्षी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब भारत के राष्ट्रीय पक्ष के बारे में फैसला किया जाना था कि कौन बनेगा, तब उसमें दो के बीच में कंपटीशन था, एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरा मोर, और आपको मालूम है कि मोर राष्ट्रीय पक्षी बना, तो इसको लेकर के एक चिंता व्यक्त की गई है। तो इस प्रकार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी भी प्री एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है। फ्रेंड्स, अब मैं आता हूं पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था के मूल्यांकन पर। वक्त बहुत कम है, लेकिन मैं केवल एक पॉइंट पर बात कर आपसे करना चाहूंगा, और वो ये कि देखिए, हम जब कहते हैं कि भारत पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये गर्व की बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था कहते हैं, और जब इसको हम पर कैपिटा इनकम में डिवाइड करेंगे, तो पता लगेगा कि वो जो गर्व था वो कहीं ना कहीं धीमा पड़ने लगा है, क्योंकि इसमें जो बहुत बड़ा रोल होता है वह होता है जनसंख्या का। क्योंकि मान लीजिए कि मेरे पास 1000 रुपए हैं, और 1000 रुपए हैं और मेरे 5 संतान हैं, तो एक एक संतान के हिस्से में कितना आएगा, 200 रुपए। और एक व्यक्ति है जिसके पास 1000 रुपए या जिसके पास 800 रुपए है, और लेकिन जिसकी संतान एक है, तो उसके पास उसके हिस्से में कितना आ जाएगा, 800 रुपए। तो वो ज्यादा धनी हुआ या मैं ज्यादा धनी हुआ, इसी तरह से आपको इतिहास के आंकड़ों का उपयोग करना है। देखिए, जो शुरू के 7 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये अर्थव्यवस्था का सच भी है। आंकड़ों पर सीधे सीधे मत जाइए आप, अगर आपको आर्थिक व्यवस्था को समझना है, अर्थशास्त्र को, तो आंकड़ों की सच्चाई पर जाना होगा। अमेरिका का 1522, चलिए हम मान लेते जो GDP है वो 1522 लाख करोड़ डॉलर है, 1522 लाख करोड़, मतलब लाख करोड़ डॉलर में अब मैं नहीं कहूंगा 1522, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन है वो 33 करोड़ है, 33 करोड़। चीन ये 1000 है, 1000 लाख करोड़, लेकिन पॉपुलेशन है 140 करोड़। अब हम आते हैं जापान का है 365, लेकिन पॉपुलेशन है केवल 13, 365 और पॉपुलेशन है 13, यानी कि 365 रुपए मोटे तौर पर कह लीजिए कि 13 लोगों में बंट रहे हैं। और जर्मनी का है 284 और उसकी पॉपुलेशन है 8.5 करोड़। अब भारत है, भारत चलिए हमारी जो भी अभी है, हमारी अब जो अभी जो कैलकुलेट की जाती है वो है 209, लेकिन हमारी पॉपुलेशन है 130। अब उसको डिवाइड करिए तो पता लगेगा कि कितना हिस्से में आ रहा है, जिनको हमने पीछे छोड़ा है। अब आप देखिए कि ब्रिटेन हमारी 209 है और ब्रिटेन की केवल 201 है, थोड़ा सा ही हमसे कम है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन हमसे कितनी कम है, 7.75 करोड़। और यही 7.75 करोड़ की लगभग आबादी फ्रांस की है, जिसकी GDP है 192 लाख करोड़। तो हमें इन आंकड़ों को इस नजरिए से भी देखना चाहिए। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की ढेर सारी क्लिपिंग्स मैं आज आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप सब अपने ढंग से देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इनमें से कुछ दोस्तों के नाम हैं सचिन अड़गांवकर, अनूप कुमार, सूर्यभानु बांधे रायपुर छत्तीसगढ़ से, शालिनी पाठक और प्रेमचंद यादव बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।